ਲਾਭੋ ਗਿਰਿਵਰ ਦਾਰੀ ਜੈ ਗੋਪੀ ਜਨ ਵਲਾਭੋ ਗਿਰਿਵਰ ਦਾਰੀ ਯਸ਼ੋਦਾਨੰਦਨ ਬ੍ਰਜ ਜਨ ਰੰਜਨ ਯਸ਼ੋਦਾਨੰਦਨ ਬ੍ਰਜ ਜਨ ਰੰਜਨ ਯਮੁਨਾ ਤੀਰਾ ਬਨ ਚਾਰੀ ਯਮੁਨਾ ਤੀਰਾ ਬਨ ਚਾਰੀ ਜਯ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਕੁੰਜ ਬਿਹਾਰੀ ਜਯ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਕੁੰਜ ਬਿਹਾਰੀ ਜਯ ਰਾਧਾ ਮਾਧਵ ਜੈ ਓਮ ਵਿਸ਼ਨੁ ਪਾਦ ਪਰਮਹੰਸ ਪਰਿਵਰਾਜ ਕਚਾਰੀ ਅਸ਼ਟੋਤਰ ਸਹਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀਮਧਿ ਦਿਵਾਇਂਗ੍ਰੇ ਅਭਯ ਚਰਣਾਰਵਿੰਦ ਭਕਤਿ ਵੇਦਾਂਤ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀਲ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਕੀ ਜੈ ਨਿਤਿ ਲੀਲਾ ਪ੍ਰਸਿਸਕੋਨ ਸਾਮੁਦਰਾਚਾਰਿਯ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਹੋਲਵਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀਲ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਕੀ ਜੈ ਨਾਮਾਚਾਰ ਹਰਿਦਾਸ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਜੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਤੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਗਦਾਧਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਸਦਿ ਗੌਰ ਭਕਤਿ ਵ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਪਾਰਥ ਸਰਥੀ ਲਲਿਤਾ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਗੋਪ ਗੋਪੀਨਾਥ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁੰਡ ਰਾਧਾ ਕੁੰਡ ਗਿਰੀ ਗੋਵਰਧਨ ਕੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਂਡਤਾਈ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਹਨੁਮਾਨ ਕੀ ਜੈ ਸਮਵੇਤ ਭਕਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਜੈ ਅਨੰਤ ਕੋਟਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਜੈ ਇਸਕੌਨ ਵਰਤ ਮਨਾਚਾਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕੀ ਜੈ ਗੌਰ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦੇ ਆਲ ਗਲੋਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਿਮਿਲ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਆਲ ਗਲੋਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਿਮਿਲ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਆਲ ਗਲੋਰੀਜ਼ ਟੂ ਸਿਮਿਲ ਡਿਵੋਟੀਜ਼ ਆਲ ਗਲੋਰੀ ਟੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਐਨ ਗੋਰਾਂਗਾ ਜੈ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਜੈ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਚੰਦ੍ਰ ਜੈ ਗੌਰ ਭਕਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੈ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਜੈ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਚੰਦ੍ਰ ਜੈ ਗੌਰ ਭਕਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੈ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਜੈ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਸ੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ ਚੰਦ੍ਰ ਜੈ ਗੌਰ ਭਕਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗ੍ਰੰਥਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਤੋ ਆਜ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ ਪੰਡਿਤ ਕਾ ਤਿਰੁਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਹਮ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ ਪੰਡਿਤ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਲੀਲਾਏ ਹੈ ਚੇਤਨ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਉਨਕੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਚੇਤਨ ਭਾਗਵਤ ਹੈ ਮਧਯ ਖੰਡ ਕਾ 21ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਇਸਮੇਂ ਚੇਤਨ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਕੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਨਮਾਨ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵੰਭਰ ਯਾਨੀ ਚੇਤਨ ਮਹਾਪ੍ਰਭੁ ਸਭ ਅਨੁਚਰੋਂ ਕੇ ਸਹਿਤ ਨਗਰ ਮੇਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਹਾਂ ਪਰ ਨਗਰ ਨਵਦੀਪ ਮੇਂ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਤੇ ਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੇਂ ਏਕ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਵੰਭਰ ਹਰੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਾਥ ਲੇਕਰ ਨਗਰ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਨਗਰ ਕੀ ਸੀਮਾ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬੀਓਂ ਕੇ ਘਰ ਥੇ ਮਤ ਪ੍ਰਤਿਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਵਿਸ਼ਵੰਭਰ ਭ੍ਰਮਏ ਨਗਰ ਸਭ ਸੰਗ ਅਨੁਚਰਨ एक दिन ठाकुर पंडित संग करी नगर भ्रमण करे विश्वंभर हरि।
तो उधर निकलते ही प्रभु विश्वंभर को गंध आई। किस चीज की गंध आई? किस चीज की गंध आई? तो किस चीज की गंध आई? शराब की गंध आई। मदिरा के गंध से बारूणी का स्मरण हुआ। सची नंदन भगवान को बलराम भाव का आवेश हुआ। बलराम जी को बारूणी बहुत प्रिय है, तो बारूणी का भाव हुआ। तो बाहर की सुध बुध भूल कर हुंकार करने लगे और बार बार श्रीवास से कहने लगे, मैं तो भीतर जाता हूँ। किस लिए? शराब पीने के लिए। भगवान कहते हैं, मैं तो शराब पीने के लिए भीतर जाता हूँ।
न गारे रे अंते आछे मध्य पेरे घर जाई ते पाइला गंध प्रभु विश्वंभर। मध्य गंधे वारुणे वारुणे रे हाइल स्मरण बलराम भाव हाइला सचिर नंदन। बाहे पासारिया प्रभु का राय हुंकार उठोगी या श्रीवास रे बोले बार बार।
प्रभु बोले, श्रीवास मैं तो चला भीतर। भगवान क्या कह रहे हैं श्रीवास से? अब तो मैं भीतर जा रहा हूँ। किस लिए? किस लिए? शराब पीने के लिए। श्रीवास चरण पकड़कर मना करने लगे। भगवान के चरण पकड़ करके मना कर रहे हैं श्रीवास। प्रभु बोले, प्रभु बोले, क्या मेरे लिए भी विधि निषेध है? भगवान कहते हैं, क्या मेरे लिए भी कुछ नियम होते हैं क्या कि मैं ये काम करूं ये काम ना करूं? क्या मेरे लिए है क्या? फिर भी श्रीवास निषेध करते ही रहे। श्रीवास बोले, हे प्रभु, आप जगत के पिता हो, यदि आप मारोगे तो कौन बचा सकता है? आपकी लीला ना समझकर जो लोग निंदा करेंगे वे जन्म मरण में दुख भोग कर मरेंगे। आपकी निंदा करेंगे और फिर कष्ट पाएंगे, इसलिए आप ऐसा मत काम करो जिससे लोग आपकी निंदा करें। आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उनका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वे आपकी निंदा करेंगे। देखा भक्त का कैसा भाव होता है। वो जानता है कि भगवान के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी काम करें उनके लिए सब शुद्ध है, लेकिन जो लोग उनकी निंदा करेंगे उनका बड़ा नुकसान होगा, इसलिए आप ऐसा काम मत करो जिससे लोग आपकी निंदा करें। हाँ, प्रभु बोले, श्रीनिवास ओए एठोगिया माना करे श्रीनिवास चरणे धरिया। प्रभु बोले, मारे हो की विधि प्रतिषेध तथापि या श्रीनिवास करे निषेध। श्रीनिवास बोले, तुम ही जगत तेरे पिता तुम सहकारी सेवा के आर रक्षिता। न बुझे तुम्हारे लीला निंदे बे जन जन्मे जन्मे दुख तारहाई बमरण। हाँ, आप प्रभु हो, सनातन हो, नित्य धर्ममय हो, आपकी इस लीला को कौन समझेगा? हाँ, यदि आप प्रभु शराबियों के घर में घुसोगे तो मैं भी जाकर कहाँ घुसूंगा? गंगा में। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? श्रीवास पंडित कह रहे हैं कि अगर आप शराबियों के घर में घुसोगे तो मैं क्या कहाँ घुसूंगा? गंगा में घुसूंगा। ना बोझी तुम्हारे लीला निंदे बे यजन जन्मे जन्मे दुख तार हाय बेमरण। नित्य धर्म मय तुम्हें प्रभु सनातन ए लीला तुम्हारे बुझी वेच को न जन। यदि तुम्हें उठे प्रभु मध्य पेर घरे प्रविष्ट है मुमोई गंगारे भीतरे। अब भक्त के संकल्प का प्रभु उल्लंघन कभी नहीं करते। अतः प्रभु श्रीवास के वचन को सुनकर हंसने लगे और प्रभु बोले, तुम्हारी जिसमें इच्छा नहीं है वो मैं नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं करूंगा। श्रीवास जी के वचनों से श्री बलराम भाव को दबा करके महाभाग श्री गौर धीरे धीरे राजपथ पर चलने लगे। यदि तुम्हें उठे प्रभु मध्य पेर घरे प्रविष्ट है मोहे गंगा रे भीतरे। भक्ते रे संकल्प प्रभु न करे लंगन हासे प्रभु श्रीवासे रे सुनिया बचन। प्रभु बोले, तो मरना है
जादे इच्छा ना उठे बेतोरे वाक्य न करिबे मिछा। श्रीवास बचाने संबरी राम भाव धीरे धीरे राजपथ चले महाभाग।
तो इससे क्या पता चलता है, भगवान देखो भक्त के कितने अधीन हैं। श्रीवास पंडित जो है नहीं चाहते थे कि भगवान शराब पिए, तो भगवान ने फिर शराब नहीं पी। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। अब एक घटना है देवानंद पंडित की। देवानंद पंडित ने श्रीवास ठाकुर का अपराध किया। एक बार श्रीवास ठाकुर देवानंद पंडित की भागवत कथा में गए, तो श्रीवास पंडित देवानंद पंडित की भागवत कथा में गए और उस कथा में श्रीवास पंडित उस विशेष प्रकरण को सुनकर के रोने लगे, प्रेम के आंसू बहाने लगे। तो देवानंद पंडित यद्यपि भागवत सुनाता था लेकिन उसके अंदर भक्ति नहीं थी, और उसके जो शिष्य जो भागवत सुनते थे उनके अंदर भी भक्ति नहीं थी। तो वो समझ नहीं पाए कि श्रीवास पंडित क्यों रो रहे हैं। उस कथा में ऐसा जो है प्रकरण था कि प्रेम के कारण श्रीवास पंडित रो रहे थे, और जो सुनाने वाले और सुनने वाले ऐसे मूर्ख है कि वो नहीं समझ रहे कि ये कितने महान भक्त हैं जो रो रहे हैं भगवान के प्रेम में। तो देवानंद पंडित के शिष्यों ने श्रीवास पंडित को पकड़ करके उठा करके और बाहर डाल दिया, ये मान करके कि हमारी कथा में बाधा डाल रहे हैं। तो इससे चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी थे देवानंद पंडित से। तो देवानंद पंडित को जब भगवान ने देखा तो महाप्रभु जो है देव योग से उसी मार्ग से निकले जहां से देवानंद पंडित की व्याख्या सुनाई पड़ेगी। सब प्राणियों के हृदय निवासी प्रभु सब तत्व जानते हैं, वे देवानंद पंडित की व्याख्या में भक्ति योग का महत्व नहीं सुने। तब प्रभु गुस्से से बोले, ये बेटा क्या अर्थ बखान कर रहा है, ये भागवत का अर्थ किसी जन्म में भी नहीं जान पाएगा। सेखाने देवानंद पंडित तेरे बात परम सुशांत विप्र मोक्ष अभिलाम। महाभागवते भागवते महा अध्यापक लोके गोते मर्म अर्थ न जाने न भक्ति ही न दोसे। देवे प्रभु भक्त संगे से पथे जाए जे खाने ते तान व्याख्या सुनी वारे पाए। सर्वभूत हृदय जानाए सर्व तत्व न सुनाए व्याख्या भक्ति योगे रे महत्व। भगवान क्या कहते हैं, इस बेटे का श्री भागवत में भला क्या अधिकार है। श्रीमद् भागवत में तो श्रीमद् भागवत तो ग्रंथ के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवत में केवल भक्ति ही एकमात्र पुरुषार्थ है। श्रीमद् भागवत प्रेम रूप है, ऐसा चारों वेद कहते हैं। कोप बोले प्रभु बेटा की अर्थ बखाने भागवत अर्थ है कौन जन्मे हो न जाने। हे बेटा रे भागवत कौन अधिकार ग्रंथ रूपे भागवत कृष्ण अवतार। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत है प्रेम रूपे भागवत चारी वेद कहे। चारों वेद दही है और श्री भागवत उसका क्या है, नवनीत। उसे श्री सुखदेव ने मत करके निकाला है और श्री परीक्षित ने खाया है। मेरा प्यारा सुखदेव ही भागवत को जानता है और मेरे तत्व को श्री भागवत बखानता है। मुझ में मेरे दास में और भागवत ग्रंथ में जो भेद करता है उसका सब प्रकार से नाश हो जाता है। मोर प्रिय सुख से जाने में भागवत भागवत कहे मोर तत्व अभिमत। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते जार भेद आछ तार नास भाले मते। इस प्रकार कहूँ क्रोध में भरे हुए भागवत तत्व बखान करने लगे, जिससे सुनकर वैष्णवगण महा आनंद में बह गए। फिर प्रभु बोले, भागवत में भक्ति के अतिरिक्त जो और कुछ बखानता है वो अधम कुछ भी नहीं जानता, ये बेटा तो निरंतर भक्तिहीन व्याख्या करता जा रहा है। कौन कौन कर रहा है भक्तिहीन व्याख्या? देवानंद पंडित। आज मैं इसकी पोथी फाड़ डालूंगा, भगवान कहते हैं इसकी पुस्तक को मैं फाड़ दूंगा, क्योंकि ये भागवत कहाँ पढ़ रहा है, तुम लोग प्रत्यक्ष देख लो। शक्ति बिने भागवते जी आरे बखाने, प्रभु बोले से अधम के छोई ना जाने, नेरे बदी भक्तिहीन ए बेटा बखाने, आज पोथी चेरो ए देखे विद्यमाने। फिर प्रभु बोले भागवत परम अचिंत है, सब शास्त्रों का राजा है, इसको विद्या और तप की प्रतिष्ठा से नहीं समझा जा सकता। जो ये समझता है कि मैं भागवत जानता हूँ, वो भागवत के प्रमाण को नहीं जानता है। भागवत में जिसकी अचिंत ईश्वर बुद्धि है, वो भागवत का अर्थ, जो भक्ति सार है, उसे जानता है। पोथी चिरी मारे प्रभु क्रोधा वैसे जाए, सकल वैष्णव गण धरिया रहाए, माँ चिंत भागवत सर्व शास्त्र राय, यह न बोझिए विद्या तप प्रतिष्ठाए, भागवत बोझी है न जार आच ज्ञान, से न जाने प्रम कब भागवत रे प्रमाण, भागवत अचिंत ईश्वर बुद्धि जार, से जाना ये भागवत अर्थ भक्ति सार। तो सब गुणों में देवानंद पंडित के समान ज्ञानमान कोई बिरला ही मिलेगा, ऐसा देवानंद जैसे भी लोगों का जब भागवत के विषय में भ्रम है, तो फिर औरों का जो भागवत जानने का गर्व है वो दंडनीय है। उनके दंडदाता यमराज हैं। भागवत पढ़ पढ़ा करके भी किसी किसी की बुद्धि नष्ट हुई दिखती है, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उसकी पोथी फाड़ने के लिए बढ़े, तो वैष्णवों ने पकड़ करके भगवान को रोक लिया। इस प्रकार से जो है भगवान देवानंद पंडित से बहुत नाराज है ना। अब फिर से देवानंद पंडित को जब देखा कुछ दूरी पर भगवान ने, तो फिर क्रोध करके कहने लगे, और उनको याद आया क्या कि देवानंद पंडित का अपराध हुआ है श्रीवास पंडित के प्रति, उनको याद आया। जिस समय प्रभु ने अपने ऐश्वर्य का प्रकाश भी नहीं किया था, ये जगत प्रेम शून्य था, सब दास दुखी थे, उस समय यदि कोई गीता भागवत पढ़ाता भी था तो भी किसी के मुख से ये सुनने में नहीं आता था कि इनका अभिप्राय भक्ति में है। उस समय देवानंद ही बड़े महंत थे, बड़े शांत थे, लोगों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, निरंतर भागवत पढ़ाया करते थे और कुमार अवस्था से ही सन्यासी के समान व्रतधारी थे। देवानंद पंडित तेरे श्रीवासे रस्थाने, पूर्व अपराधे आचे तहां हैल मन, जिस समय नहीं किछु प्रभु रे प्रकाश, प्रेम सुन जगत दुखित सब दास, यदि वह पढ़ाए के हो गीता भागवत, तथापि न सुन के हो भक्ति अभिमत, से समय देवानंद परम महंत, लोके बड़े अपेक्षित परम सुसंत, भागवत अध्यापन करे निरंतर, आ कुमार सन्यासी रे प्राय व्रत धर। देव योग से एक दिन भागवत सुनने की अभिलाषा से श्रीवास इनके यहाँ गए। ये पहले की घटना है कि श्रीवास इनके यहाँ गए। भागवत का प्रति अक्षर प्रेममय है, उसे सुनकर श्रीवास का हृदय पिघल गया। महाभागवत श्रीवास भागवत सुनकर रोने और लंबी सांस लेने लगे। ये देखकर पापी विद्यार्थी बोले, बड़ी आफत आई इसके मारे भाइयों, हम तो पढ़ नहीं पाते हैं, हमारा समय नष्ट हो रहा है। देखा है? वो जो विद्यार्थी हैं वो कुछ नहीं समझ रहे हैं भागवत को, वो श्रीवास रो रहे हैं भागवत सुन करके, तो क्या कहते हैं, अरे हमारा टाइम खराब हो रहा है, इसके कारण हम लोग भागवत नहीं पढ़ पा रहे हैं। दैवी एक दिन तथा गेला श्रीनिवास, भागवत सुनिते करिया अभिलाष, अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेम मय, सुनिया द्रविल श्रीनिवास हृदय,
भागवत सुनिया कांदा ए श्रीनिवास महाभागवत विपृछाणे घन स्वान वापिस से पढ़ो या बोले हाई ले जंजाल पढ़ी ते न पाई भाई व्यर्थ जाए काल।
और श्रीवास का रोना बंद नहीं हो रहा था। श्रीनिवास चैतन्य चंद्र की प्रिय देह है, जगत पावन है। तब पापी विद्यार्थियों ने परामर्श करके श्रीवास को खींचकर बाहर निकाल दिया। देवानंद पंडित ने भी उनको निवारण नहीं किया। जैसे गुरु भक्ति शून्य है वैसे ही शिष्यगण भी थे। बाहरी ज्ञान होने पर श्रीवास दुखित होकर घर चले गए। अंतर्यामी प्रभु विश्वम्भर ये सब जानते हैं।
संबरण नाहे श्रीनिवास रे क्रंदन चैतन्य रे प्रिय देह जगत पावन पापिष्ठ पाड़ो या सब जुगति करिया बाहिरे एड़ी लनिया श्रीवास तानिया देवानंद पंडितो न कैले निवारण गुरु यथा भक्ति सुन तथा शिष्य गण बाय पाए दुख श्रीनिवास के लगन ता सब जाने अंतर्यामी विश्वम्भर।
अब देवानंद को जैसे देखा उनको सब याद आ गया चैतन्य महाप्रभु को, जबकि चैतन्य महाप्रभु उस समय नहीं थे जब ये घटना हुई। ये वो तो अंतर्यामी है। जैसे देवानंद पंडित को देखा तो उनको याद आया कि ये बड़ा
बेवकूफ है।
चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया देवानंद पंडित के ऊपर। क्यों? क्योंकि श्रीवास का अपराध इसने होने दिया, इसने रोका नहीं अपने विद्यार्थियों को। उनको गुस्सा आया और बोले अरे ओ देवानंद तुम अब सबको भागवत पढ़ाने लगे हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ सुनो। जिस श्रीवास के दर्शन के लिए गंगा जी भी मनोरथ करती हैं, ऐसा भक्त तुम्हारे यहाँ भागवत सुनने को गया था। कौन कह रहा है?
चैतन्य महाप्रभु।
किससे कह रहे हैं?
देवानंद पंडित से कह रहे हैं।
किस अपराध के कारण तुमने उनको अपने शिष्यों के हाथों खिंचवाकर घर के बाहर डाल दिया? भागवत सुनने पर जो श्री कृष्ण भक्ति के रस में रोवे, क्या वह खींच कर बाहर फेंके जाने योग्य है? मैं समझ गया कि तुम जो भागवत पढ़ाते हो उसका अभी तात्पर्य किसी जन्म भी नहीं जान पाओगे।
देवानंद दर्शन हैले स्मरण क्रोध मुखे बोले प्रभु सचिरे नंदन अये अये देवानंद बलिये तुम्हारे तुम्हें एबे भागवत पढ़ाओ सबारे। जे श्रीवास देखी ते गंगार मनोरथ केने जन्ने गेला सुनी बारे भागवत कौन अपराध तारे से हाथाइया बाड़ी रे वाही रे तारे एड़ी ले तानिया भागवत सुनी ते जे कांदे कृष्ण रसे तानिया फेली ते से तहारे योग्य आईते। बुझिलाम तुम जे पढ़ाओ भागवत कोनो जन्मे न जाने ग्रंथे रे अभी मत।
जब लोग खूब पेट भर के खा लेते हैं तो बाहर जाकर निवृत्त होने पर ही उनको सुख मिलता है, परंतु प्रेम में भागवत को पढ़ाकर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमको उतना सुख भी तो नहीं मिला। ये व्यंग वचन सुनकर विप्रवर देवानंद तो पानी पानी हो गया। भगवान ने बहुत उसे डांटा तो देवानंद बड़ा शर्मिंदा हो गया और कुछ उत्तर ना दे सका। और क्रोधावेश में ऐसा कहकर विश्वम्भर देव तो चले गए और देवानंद भी दुखी होकर अपने घर चला गया। फिर भी देवानंद बड़ा पुण्यवान ही है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने बचनों से दंड दिया तो बड़ा पुण्यात्मा था वो। कि भगवान अगर डांटे किसी को तो वही तो बड़ा पुण्यवान है। तो भागवत की इस पर कृपा तो हुई, हालांकि प्रेम नहीं था, लेकिन भागवत पढ़ने का पढ़ाने का उसको ये फल मिला कि भगवान की डांट मिली है ना। तो भागवत का जो है फिर भी लाभ है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है और फिर भी भागवत पढ़ाए पढ़ाए तो लाभ तो होगा। अगर भगवान डांटे तो भी बड़ा लाभ है।
जिनके दंड से मृत्यु प्राप्त होने पर जीव वैकुंठपुरी को जाता है, उन श्री चैतन्य चंद्र के दंड को वही पाते हैं जो बड़े पुण्यात्मा होते हैं।
सुनिया बचन देवानंद विप्रवर
लज्जाए रही लेके छुना करे उत्तर क्रोध से बलिया चलीला विश्वंबर दुखी से चलीला देवानंद निज कर।
श्री चैतन्य के दंड को जो अपने मस्तक पर चढ़ा लेता है वही दंड उसके लिए भक्ति योग हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु दंड को अपने माथे में चढ़ा ले तो वो दंड क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, भक्ति योग। अगर दंड पाया आपने चैतन्य महाप्रभु का और आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गलत हूँ, अपराधी हूँ, मुझे दंड मिला, तो आप क्या बन गए, भक्त बन गए। बस ये तो भक्ति मिल गई आसानी से। अगर दंड आपने मान लिया कि हाँ मुझे दंड दिया, मैंने गलती की थी, मुझे दंड मिला, बस आपको भक्ति मिल गई। श्री चैतन्य के दंड का जिसके चित्त में भय नहीं है वो पापी जन्म जन्म तक यम के दंड का भागी बनता है। श्री भागवत, तुलसी, गंगा और भक्तजन इन चार स्थानों में श्री कृष्ण के ही चार प्रकार के विग्रह हैं। श्री कृष्ण का ही शरीर है क्या, चार, एक तो भागवत, दूसरा तुलसी और तीसरा गंगा और चौथे भक्तगण, कृष्ण के ही शरीर है। मूर्ति तो प्रतिष्ठा से पूजा होती है, मूर्ति में जब प्रतिष्ठा होती है तब पूजा होती है, लेकिन ये चारों तो जन्म से ही क्या है, पवित्र है। हाँ ऐसा वेद कहता है। तथापि यह देवानंद ने बड़े पुण्यवंत वचन यो प्रभु जारे करी लेने दंड चैतन्य रे दंड महासुकृति से पाए जारे दंडे मारी ले बैकुंठे पूरी जाए चैतन्य रे दंड जे मस्तक के करी लाए सही दंड तारे तारे भक्ति योग है चैतन्य रे दंडे जारे चित्ते नहीं भय जन्म जन्म से पापिष्ठ यम दंड है भाग्यवत तुलसी गंगा है भक्त जन चतुर्धा विग्रह है कृष्ण ए चारी सने जीव न्यास कारी रहते मूर्ति पूजे है जन्म मात्र ए चारी ईश्वर वेद कहे। श्री चैतन्य कथा का आदि अंत मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कौन कह रहा है, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। जैसे जैसे चैतन्य देव की यश का बखान कर रहा हूँ, श्री चैतन्य चंद्र के भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार है, वे इसमें मेरा कुछ अपराध न माने। ये कथा अमृत का खंड है, जिस कथा के श्रवण से अंतःकरण का पाखंड दूर होता है। ना चैतन्य कथा रे आदि अंत ना ही जानी जेते मते चैतन्य रे यथ से बखानी चैतन्य दासे रे पाए मोरे नमस्कार इथे अपराध के छुना हूँ के अमार। अब एक और दूसरी घटना है, चैतन्य महाप्रभु की लीला है श्रीवास पंडित के साथ में, तो आप सुनिए ध्यान से। एक दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है अद्वैत प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु परम आनंद में उन्मत्त होकर सब भक्तों से कहते हैं, कौन, अद्वैत आचार्य सब भक्तों से कहते हैं, हे भाइयों सुनो, एक गायक समाज तैयार करो जिसमें आज मुख भर भर कर चैतन्य राय के नाम गुण का गान करें। आज अन्य किसी अवतार का यशोगान नहीं करेंगे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु तो सब अवतारों के अवतारी हैं। तो आज और किसी अवतार का हम लोग गुणगान नहीं करेंगे, किसका गुणगान करेंगे, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे। महाप्रभु ने सब जगत का उद्धार कर दिया है तथा हम सबके लिए भी जिनका अवतार हुआ है, जिनके अनुग्रह से ही हम लोग सब जगत पूजित हैं, सब जगत पूजित हैं, और जिन्होंने संकीर्तन जैसा धन प्रकट किया है, तो सिंह विक्रम से कहता हूँ मैं तो नाचूंगा, तुम लोग चैतन्य यश का गान करो, मन में भय मत करो। अब चैतन्य महाप्रभु नहीं कहते हैं कि उनका कोई गुणगान करे, वो तो भक्ति के भाव में रहते हैं। अद्वैत आचार्य ने कहा कि कोई भय मत करो, आज हम चैतन्य महाप्रभु गुणगान करेंगे। सुने भाई सब एक कर समवाए मुख भरे गाय आज श्री चैतन्य राय आज आर कौन अवतार गयो नाई सर्व अवतार मय चैतन्य गोसाई जे प्रभु करी ले सर्व जगत उद्धार क्षम सब लगी ये प्रभु रे अवतार सर्वत्र अमर जान प्रसाद पूजित
संकीर्तन हेन धन जे कैले विदितम नाचिया में तो मारा चैतन्य से गाओ सिंह है बोले पाछे मने पर भय पाओ।
प्रभु तो अपने को निरंतर छिपाते रहते थे इसलिए कहीं वे नाराज ना हो इस बात का सबको डर था कि भगवान नाराज होंगे क्योंकि भगवान क्या कहते हैं नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। किंतु अद्वैत जी के वाक्य सबके लिए अलंग थे अतः चेतन अवतार के चरित्रों को सब गाने लगे। आनंद बेहबल होकर अद्वैताचार्य नाचने लगे और भक्त सब चारों ओर चैतन्य का गुणगान गाने लगे। इस नवीन अवतार के नाम और यश को सुनकर सब वैष्णव प्रेमानंद में विवश हो गए। स्वयं श्री अद्वैत प्रभु चैतन्य की यश भरे गीत रचना करके जगत के निस्तार के लिए वे भक्तों से बुलवाकर नाच रहे थे। हे करुणा सागर नारायण श्री चैतन्य प्रभु दीन दुखियों के बंधु मेरे ऊपर दया करो। अद्वैत सिंह के श्रीमुख का ये पद है, इसका कीर्तन करने से सब संपत्ति बढ़ती है। कोई कहते श्री सचिन नंदन की जय हो और कोई कहते श्री गौर चंद्र नारायण की जय हो। संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल की जय हो और भक्तजनों के प्यारे और पाखंडियों के काल रूप प्रभु की जय हो। अद्वैताचार्य बड़ा उद्दाम नृत्य कर रहे थे और अन्य सभी एकमात्र श्री चैतन्य के गुण कर्म नाम गा रहे थे। प्रभु से आपना लुकाये न निरंतर क्रोध पाछे है न सभार ए डर तथापि अद्वैत वाक्य अलंग्य सभार गाये ते लागे ला श्री चैतन्य अवतार नाचे न अद्वैत सिंह आनंद बेवल चतुर देगे गाये सब चैतन्य मंगल नव अवतारे रे सुनिया नाम यथ सकल वैष्णव हैले आनंद बिबसन आपने अद्वैत चैतन्य रे गीत करी बुलाई ला नाचे प्रभु जगत निस्थरी श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर दीन दुखी तेरे बंधु मोरे दया कर। अद्वैत सिंह रे श्री मुखे रे ए पद इहारे कीर्तन में बाढ़े सकल संपद केहो बोले जय जय श्री सचिनंदन केहो बोले जय गौर चंद्र नारायण जय संकीर्तन प्रिय श्री गौर गोपाल जय भक्त जन प्रिय पाखंडी रे कान नाचिन अद्वैत सिंह परम उद्दाम सब एक श्री चैतन्य गुण कर्म नाम। अब वैकुंठ नायक हरि ब्राह्मण के रूप में अवतीर्ण होकर संकीर्तन विहार करते हैं। ये भक्त लोग अब जो है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने लगे। शरीर पुलक से शोभित और सुख से लोटपोट होते हैं। हे भाइयों देखो श्री चैतन्य का ऐसा अवतार हुआ है सोने की कांति को भी पराजित करने वाला उनका श्री विग्रह है। जानू पर्यंत लंबी मालाओं से सजे